मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत सादर नमस्कार। फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस का जो हमारा विषय है वह है मित्रों, जीवन में संतुलन, और उसका यह चौथा भाग है जिसे आप इस विषय का अंतिम भाग भी कह सकते हैं। इससे ठीक पहले वाले ऑडियो में मैंने आपसे वायदा किया था कि अब चौथे और अंतिम भाग में मैं जीवन के संतुलन से जुड़े जो दो सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करूंगा। उसमें पहला मुद्दा है कि हमारे जीवन से असंतुलन क्यों गायब हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि हम असंतुलित क्यों हो जाते हैं। और फिर जो दूसरा पॉइंट होगा वो यह कि यदि हम असंतुलित हो जाते हैं या जब हम असंतुलित हो जाते हैं तो फिर अपने संतुलन को फिर से कैसे वापस लाएं। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो में हम इन दोनों ही बिंदुओं पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे जीवन में असंतुलन के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। वैसे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पिछले तीन भागों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ आप में खुद की ऐसी क्षमता विकसित हो चुकी होगी कि आप जान सकें कि जीवन में असंतुलन क्यों आता है। विशेषकर तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों से जोर देकर कह लीजिए कि निवेदन किया था कि आप अपने कम से कम दो घंटे की जो लेंथ है किसी भी समय की, उसमें जो व्यवहार में उतार चढ़ाव आए हैं उनको थोड़ा सा लिख करके एनालाइज करें, और जब आप लिख करके एनालाइज करेंगे तो बहुत सी बातें आपको खुद पकड़ में आ जाएंगी, बहुत सी बातें खुद आपके समझ में आ जाएंगी, और मुझे लगता है कि वह आपका अपना खजाना होगा, वो सबसे अधिक मूल्यवान होगा। मैं चाहे कितने भी ज्ञान की बातें कर लूं, कितने भी अच्छी भाषा में, कितनी भी गहराई के साथ, कितने भी वैज्ञानिक तरीके से आपसे मैं बात करूं, लेकिन मित्रों, यदि आप अपनी बात खुद पकड़ लेंगे तो उसकी तुलना किसी दूसरे के बात से नहीं हो सकती। और मुझे यकीन है कि इस चौथे भाग को सुनने से पहले आप लोगों ने जरूर यह काम किया होगा, और यदि आपने किया है तो उसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और यह इस बात का प्रमाण है कि सच में आप इस विषय के प्रति गंभीर हैं। तो मित्रों, कुछ बातें तो आप अपने बारे में समझ चुके होंगे, अब कुछ बातें मैं उन सब के बारे में बता रहा हूं जो आम तौर पर हम सब पर कमोवेश अप्लाई होता है, हम सब पर लागू होता है। मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आंतरिक असंतुलन की लगती है, या कह लीजिए कि आंतरिक जब असंतुलन होता है तो बाह्य रूप में भी वो असंतुलित ही व्यक्ति दिखाई देगा, उसमें लगता है दोस्तों कि हम सब कहीं ना कहीं इंटरनली फ्रैक्चर्ड हैं। इंटरनली फ्रैक्चर्ड करने का मतलब है कि हम आंतरिक विखंडन के साथ जी रहे हैं। हमारा जो अंतर मन है, हमारे जो अंदर की दुनिया है, उसमें भटकाव आ गया है, या यूं कह लीजिए कि उसमें बिखराव आ गया है। जब हम आम तौर पर बात करते हैं कि बिखराव आ गया है, तो सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक जगह होनी चाहिए थी लेकिन बिखर गई हैं। मुझे इस मायने में चार चीजें महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं जो हमारे एक तरीके से आंतरिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। मित्रों, इससे पहले मैंने अवचेतन मन की बात आप लोगों से की थी, खासकर एनर्जी वाले चैनल्स ऑफ एनर्जी वाले एपिसोड में। हम सब का एक अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, और सच पूछे तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, ट्रेजर है। हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को, हमारे स्वप्नों को, हमारे आचरण को, सबको संचालित करने वाला जो अंग है कह लीजिए, या संचालित करने वाला या उसे कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर है, वह इनफैक्ट हमारा अवचेतन और अचेतन मन ही है। यह कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ आप कोई धोखेबाजी नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हां, हम जो खिलवाड़ कर सकते हैं, जो धोखेबाजी कर सकते हैं, जो चीट कर सकते हैं, वह अपनी इच्छाओं के साथ कर सकते हैं और अपने विचारों के साथ कर सकते हैं और अपने काम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अचेतन और अवचेतन मन के साथ हम कोई धोखेबाजी नहीं कर सकते, कोई षड्यंत्र नहीं रच सकते, न तो उसके सामने हम झूठ बोल सकते हैं और न सच को कहने से बच सकते हैं। यह हमारा अवचेतन मन होता है, मतलब बिल्कुल पवित्र है, जैसा है वैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा वह कहता है। यह अवचेतन मन है और अचेतन मन है। मित्रों, इसके मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगा। अब हमारी दूसरी जो हमारा जो दूसरा जो तत्व होता है वो होता है हमारी इच्छा, डिजायर। इसको आप सब जानते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम ये कर लें, हम ये पा जाएं, ऐसा हो जाए। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारे डिजायर्स हैं। याद रखिए कि हमें लगता है कि ये हमारी इच्छा है, लेकिन मूलतः ये हमारी इच्छा नहीं होती है। पहली बात, उसका पहला टकराव हमारे अवचेतन मन से होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इस किसी चीज को नहीं चाह रहा है, लेकिन इच्छा है कि हम उसे चाहें, या विपरीत इसके कि हमारा अवचेतन मन उसे चाह रहा है लेकिन इच्छा के स्तर पर हम उसे नहीं चाह रहे हैं। मित्रों, मैं सांकेतिक तौर पर यहां आपको केवल बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत सी गलत इच्छाएं होती हैं, अवचेतन मन में दबी रहती है, जिसको हम अपने जीवन में सही रूप में पूरा नहीं कर पाते। हमारी इच्छा तो होती है कि हम ऐसा करें, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं कर पाते, तो हमारे अवचेतन और अचेतन मन में चली जाती है और वहां दबी रहती है। अब अवचेतन मन तो कह रहा है कि हम इसे पूरा करें, लेकिन इच्छा आप उसकी होती नहीं है पूरी करने की, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैंने ये पूरा किया तो इसके बदले में मुझे सजा मिल सकती है, समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है, डांट पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम बहुत सी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, जबकि अवचेतन मन कह रहा है कि नहीं, तुम ऐसा करो, क्योंकि वो तुम्हारी मूल इच्छा है, वो तुम्हारा रूट है। तो इस प्रकार अवचेतन मन और इच्छा के बीच में एक बिखराव आ गया, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज की जो मेरी अपनी इच्छा है, सबसे बड़ा संकट तो यह कि वो मेरी अपनी इच्छा नहीं है, वो दूसरों की इच्छा है। या तो मेरे माता पिता ऐसा चाह रहे हैं तो मैं ये इच्छा पाल रहा हूं, या मेरा समाज ऐसा चाह रहा है तो मैं ये इच्छा पाल रहा हूं, या मेरा कोई दोस्त ऐसा चाह रहा है तो मैं ऐसी इच्छा पाल रहा हूं, या दूसरों को देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी एयरफोर्स में जाना चाहिए, तो मैंने ये इच्छा पाल ली। वो मेरी, ये भी मेरी मूल इच्छा नहीं है, ये भी दूसरों के द्वारा दी गई इच्छा है। तो यहां भी अपनी इच्छा और दूसरों के द्वारा ला दी गई इच्छा में एक बिखराव आ गया। अब तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति होती है मित्रों, मेरे थॉट्स, मेरे विचार। अब मैं अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या कुछ भी दूसरे तरह के विचार मेरे दिमाग में आएंगे। केवल इच्छाओं को पूरा करने संबंधी विचार नहीं आते, बल्कि और भी दूसरे स्तर के विचार आते रहते हैं, दूसरे मामलों पर विचार आते रहते हैं। चलिए हम इच्छा को ही ले लेते हैं। मेरी इच्छा है सिविल सर्वेंट बनने की, कि मैं आईएएस में सेलेक्ट हो जाऊं, राइट? अब ये मेरी इच्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूं कि वह क्या इनके रुतबे होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, शान शौकत के साथ जीते हैं, सोशल रिकॉग्निशन होता है, कितने पावर्स होते हैं, या दूसरों के लिए करने का मौका होता है, तो मुझे बनना चाहिए। तो वो मेरी अपनी इच्छा नहीं है, वो समाज जिस तरह का अभी है उसको देख करके मेरी ये इच्छा पैदा हुई, राइट? अब मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए सोचता हूं कि मैं क्या क्या करूं। तब मुझे लगता है कि हाँ, यहां कोचिंग लेनी चाहिए, ये पढ़ाई करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए, इतना प्लान करना चाहिए, वो सब चीजें मैं करता हूं। प्लान मैंने कर लिया, ये मेरी विचार हो गए। अब ये जो मेरे विचार हैं, आप देखिए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही विचार नहीं है जो इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी है। मेरे ये विचार अपनी सुविधा के अनुसार है, या दूसरों के द्वारा बताए गए, दूसरों ने कहा कि ये करना चाहिए तो आप वैसा करने लगते हैं, बिना वेरीफाई किए कि सच में वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बिना यह सोचे कि मेरे लिए यह जरूरी है या नहीं है। फिर हम एक सोसाइटी के जो विचार है उनको फॉलो करते हैं और अपने विचार को ड्रॉप कर देते हैं, हमारा विचार यहां फिर से गायब हो जाता है, और ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हम खुद विचार कर रहे हैं, जबकि बेसिकली वो भी किसी से बारो किए गए विचार है, किसी से उधार लिए गए विचार है, और हम भ्रम में रहते हैं कि ये मेरे विचार है। तो इच्छा और विचार, और जब मैं विचार करता हूं, याद रखिए, तो जो मैं फाइनल डिसीजन लेता हूं विचार करने के बाद, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होगा इसके बाद मेरा जो लास्ट स्टेज आएगा वो काम करने का स्टेज आएगा, कर्म करने का स्टेज आएगा। और जो कर्म करने का स्टेज आएगा बट नेचुरली कि उसकी शुरुआत तभी होगी जब मेरे ये विचार एक फाइनल रूप ले लें कि मुझे करना क्या चाहिए। तो जब मैं विचार करता हूं कि मुझे इसके लिए करना क्या चाहिए तो मालूम है फिर मैं अपनी सुविधा असुविधा देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि नहीं इसके लिए तो ये जरूरी है और मुझे करना ही है, नॉट एट ऑल। मैं ये देखता हूं कि मेरे लिए कौन सा सुविधाजनक होगा और जो मेरे लिए सुविधाजनक होता है उसके हिसाब से मैं काम करना शुरू कर देता हूं। अब आप देखिए जरा सा थोड़ी से गंभीरता के साथ सोचिए मित्रों कि आप बनना कुछ चाहते थे लेकिन इच्छा आपने कुछ बनने की पाली, इच्छा के अनुकूल फिर आपको विचार करना चाहिए था लेकिन वो विचार आपके उस इच्छा को पूरा करने के अनुकूल नहीं है बल्कि या तो दूसरों के कहे गए के अनुकूल है या फिर अपनी सुविधाओं के अनुकूल है या अपनी क्षमताओं के अनुकूल है, उसके अनुकूल नहीं है जो होना चाहिए। तो यहां इच्छा और विचार के बीच फिर से एक द्वंद हो गया, बिखराव हो गया, टकराव हो गया। इसके बाद फिर आप काम करने के जब स्टेज पर आते हैं तो काम भी आप उसी तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करने का आपने प्लान किया है। काम करते समय तो आप पता नहीं कितने समझौते करते हैं, अदरवाइज तो आप हर चीज की सफलता के सिद्धांतों को जानते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो फिर बात आती है, कुछ दिनों के बाद जोश कम पड़ने लगता है, ऊब होने लगती है, घर की याद आने लगती है, मेमोरी पावर पर शक होने लगता है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होने लगती हैं। और फिर जो पढ़ने का काम जो होना चाहिए था, कर्म को जिस तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए था उस तरीके से आप संपन्न नहीं कर पाते। इस प्रकार से फिर से विचार और काम के बीच में फिर से एक बिखराव हो जाता है। अब आप सोच करके देखिए दोस्तों कि एक छोटी सी चीज जब काम के रूप में सामने आती है तो उसमें कितना ज्यादा बिखराव दिखाई देता है, आंतरिक भटकाव। मैंने इसे ही कहा है, इसे ही मैंने कहा है आंतरिक विखंडन, इसे ही मैंने अंग्रेजी में कहा इंटरनल फ्रैक्चर। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से सब कुछ टूट फूट गया हो, जैसे हाथ टूट जाता है ना और जगह जगह से वो चटक गया है। लगभग लगभग मुझे लगता है कि हमारा आंतरिक जो पक्ष जीवन का वो भी लगभग इसी तरह से चटक 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 गया है। कैसे संतुलन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात जो आती है दोस्तों वो है दबाव और तनाव की। दोनों अलग अलग हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है टेंशन। दोनों को एक मत समझिएगा, ये बात अलग है कि दबाव के कारण तनाव आ जाता है या तनाव के कारण दबाव बन जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे कि दोनों कैसे अलग अलग हैं, हम इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आप सोच कर देखिए, आप अभी आराम से बैठे हुए, शांत भाव से बैठे हुए हैं, आपके अंदर एक संतुलन बना हुआ है, खुश भी है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक एक फोन आ जाता है, आपके बॉस का फोन आ जाता है और बॉस का फोन आता है कि तुमको ये काम एक घंटे में करके देना है, बहुत ही अर्जेंट है और करके तुम मेरे पास आ जाओ। अब आप सोच करके देखिए कि अब प्रतिक्रिया अपने अंदर का मूल्यांकन कीजिए कि अब क्या होता है। आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं इस एक घंटे में ये करूंगा, लेकिन अब आपके पास एक और भी काम आ गया है और आपको ये दोनों काम करने हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब है कि आपके पास अब अधिक काम हो गया, काम की अधिकता हो गई है और जैसे ही काम की अधिकता हुई डेफिनेटली आप अपना संतुलन खो देंगे। आपको लगेगा कि इसको करूं, उसको करूं, ये करूं, वो करूं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और फिर सोचना शुरू कर देंगे अगर नहीं हो पाएगा तो क्या क्या होगा, वहां डांट पड़ेगी या नुकसान होगा। और जैसे ही इस तरह के थॉट्स दिमाग में आएंगे वैसे ही आपका अनुभव है ही है, हम सबका अनुभव है कि हम अपना आंतरिक संतुलन खो बैठते हैं। मित्रों ये तो वो काम है जो दूसरों के अधिकार क्षेत्र में है। बॉस की मैंने बात कही कि उन्होंने हमें काम दिया और वो काम दे सकते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन पर हमारा अपना नियंत्रण है। और मजेदार बात है कि व्यक्ति लालच में, लोभ में, या अपनी ज्यादा कामयाबी हासिल करने के चक्कर में, या कह लीजिए कि अपना ज्यादा शौर्य और पराक्रम दिखाने के चक्कर में लगातार अपने लिए काम लेता चला जाता है। मैं काम करने का विरोधी नहीं हूं, मैं तो काम को पूजा मानता हूं। मुझे तो लगता है कि आदमी अगर काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आदमी 12 घंटे सो नहीं सकता, 12 घंटे हंस नहीं सकता, 12 घंटे खेल नहीं सकता, 12 घंटे फिल्में नहीं देख सकता, 12 घंटे खा नहीं सकता। एक ही चीज है आदमी की जो 12 घंटे कर सकता है, और वो है काम। तो काम तो किया ही जाना चाहिए। मैं जो काम की अधिकता की बात कह रहा हूं वो है मेरी जो क्षमता है और मेरी जो जरूरत है उससे अधिक किसी लालच में, लोभ में या महत्वाकांक्षा के कारण मैं और काम अपने ऊपर लेता चला जा रहा हूं, जबकि उसको करने की न तो मेरी क्षमता है और सच पूछिए तो उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं लेता चला जाता हूं, अपने ऊपर बोझ लादता चला जाता हूं। जब अधिक बोझ होगा तो डेफिनेटली दबाव होगा, और जब दबाव बहुत होगा काम नहीं हो पाएंगे, जब काम नहीं हो पाएंगे तो उसके परिणाम के बारे में सोचकर फिर दिमाग में तनाव भी उत्पन्न होगा, और जैसे ही दबाव और तनाव की स्थिति आएगी कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठेगा। मित्रों, लोगों को यह बहुत गलतफहमी है कि ज्यादा 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 अलग अलग तरीके से काम करने पर सफलताएं मिलती हैं या हम महान बनते हैं, लोगों को यह लगता है। नहीं, आप एक ही काम ले लीजिए और उस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने पर, मनोयोग पूर्वक करने पर सफलता मिलती है। हां, उस एक काम में चाहे फिर आपको जितना भी व्यस्त रहना पड़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप काम को एंजॉय करने लगते हैं, काम आपकी हॉबी बन जाती है, काम ही आपका मन का रंजन बन जाता है। आप मान करके चलिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप तो खेल खेल रहे हैं, आप तो जीवन को बस जी रहे हैं, काम जीवन बन जाता है। काम के प्रति वो निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन यहां मैं काम के संख्या की बात कर रहा हूं। हम अनावश्यक अपने ऊपर लेते चले जाते हैं, या कह लीजिए कि बहुत से ऐसे काम हैं जो दूसरे कर सकते हैं हमारे बिहाव पर, हम उन्हें डाइवर्ट नहीं करते, उन्हें हम डेलीगेट नहीं करते। लगता है कि हम ही सबसे अच्छा कर पाएंगे, हमसे अच्छा दूसरा कोई कर ही नहीं पाएगा, आशंकित रहते हैं कि दूसरा कहीं खराब ना कर दे, अगर वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। इस तरह की बेवजह की चीजें छोड़ करके अपने आप को ही हम लादते चले जाते हैं और वो हमारे असंतुलन का कारण बनता है। और याद रखिए, कार्य की अधिकता ही असंतुलन का कारण नहीं बनता। जब काम नहीं होता है तब भी असंतुलन का कारण बनता है कि आपके पास कुछ नहीं है। बेरोजगार आदमी सबसे ज्यादा परेशान रहता है कि हे भगवान अब क्या करें। सवाल काम का नहीं है, सवाल काम के प्रति हमारे एटीट्यूड का होता है। लेकिन मित्रों, हम सबकी एक सीमा है, हमें अपने सीमा से अधिक जाकर के काम अगर हम करने के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने को तोड़ते ही हैं और काम की गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर तरह के काम कर सके। वो घंटे दे सकता है, अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता है, लेकिन फिर काम उतने ही कर सकता है जितने वो उस क्षमता और घंटों में उनको पूरा कर सके। मित्रों, इसी तरह से जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो अपना संतुलन बहुत जल्दी खो देते हैं, वो हमेशा एक तरह के अप्रत्यक्ष तनाव और दबाव में जीते रहते हैं। पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा एम्बिशन पाल लिया है, कितना बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया है, अपनी क्षमताओं से अधिक, अपनी जरूरत से अधिक एक बहुत ऊंचा शिखर बना लिया है अपने दिमाग में, और उस शिखर को देखते रहते हैं, अपने को हर समय बौना समझते रहते हैं, उस पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और उसी में उतरते और गिरते रहते हैं, चढ़ते और गिरते रहते हैं। जो अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं हैं वो आदमी में बहुत जबरदस्त रूप से असंतुलन पैदा करते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव में आपको एक चिड़चिड़ापन मिलेगा, उनके स्वभाव में एक उग्रता मिलेगी, बौखलाहट मिलेगी, बात बात पर वो नाराज होते रहेंगे, ये उनका स्वभाव बन जाता है। फिर आप कहेंगे तो क्या मैं आप महत्वाकांक्षा के विरोधी हैं? नहीं मित्र, मैं महत्वाकांक्षा का विरोधी नहीं हूं। मैं महत्वाकांक्षा को एक दूसरे रूप में लेता हूं। महत्वाकांक्षा का मतलब है काम करने की आकांक्षा, महत्व की आकांक्षा नहीं। मैं काम करना चाहता हूं, अच्छे से अच्छा काम करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण काम करना चाहता हूं, बड़े काम करना चाहता हूं, ये अलग बात है। लेकिन महत्वाकांक्षा होना एक अलग बात है। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि मैं वो काम करना चाहता हूं जिसमें मेरा महत्व स्थापित हो, और महत्व स्थापित करने के लिए किया गया काम जरूरी नहीं कि वो आपका अपना ही काम हो। आप कोई भी काम कीजिए ना, अच्छे से कीजिए, महत्व स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर आप महत्व अपना महत्व स्थापित करने के लिए अगर कोई काम करेंगे तो वो काम फिर अच्छे से नहीं हो सकता। प्रशंसा अलग बात है, महत्व अलग बात है, राइट। जो अगला जो बिंदु हो सकता है मित्रों वो ये है कि अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि जब अमर्यादित काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, अवैधानिक काम करते हैं, तो वह भी कहीं न कहीं हमारे जीवन के अंदर एक असंतुलन पैदा करता है। जैसे मान लीजिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं मान लीजिए कि बाजार में गया हूं और सामान खरीद रहा हूं, और मैं बड़े आराम से सामान खरीद रहा हूं, मैं बाजार में अपनी मार्केटिंग को एंजॉय कर रहा हूं, लोगों को देख रहा हूं, सामान देख रहा हूं, अपनी पसंद की चीजें खरीद रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, घर वालों के साथ गया हूं तो एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच मान लीजिए एक व्यक्ति के पॉकेट से एक पर्स निकला हुआ था, आधा निकला हुआ था, और मुझे उसमें से झलकते हुए नोट भी दिखाई दिए, हजार हजार रुपए के नोट थे, और मुझे लगा कि यार इस पर्स को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा और इतने सारे पैसे भी मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं ये काम कर लिया जाए और मैं उसे कर लेता हूं, पर्स निकाल लेता हूं चुपचाप, और वो आदमी आगे बढ़ जाता है। बस अब केवल मैंने ये एक काम किया है कि उसके पर्स को निकाल लिया है। अब केवल आप ये अब प्रिज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि अब मेरी स्थिति क्या होगी। जैसे ही वो पर्स मेरे हाथ में आया वैसे ही मेरी स्थिति क्या होगी, हालांकि जैसे ही पर्स निकालने का विचार मेरे मन में आया वैसे ही असंतुलन पैदा हो गया, सांसें अव्यवस्थित हो जाएंगी क्योंकि अब मैं गलत काम करने जा रहा हूं, धीरे धीरे पहुंचूंगा, पैर भी डगमगाने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, कुछ ना कुछ स्थितियां गड़बड़ होने लगी हैं। और जब पर्स मेरे पास आ गया तो वो काम तो खत्म हो गया, अब मुझे संतुलित हो जाना चाहिए, लेकिन क्या मैं संतुलित हो जाऊंगा? अब मैं लगातार असंतुलित रहूंगा क्योंकि अब मेरा ध्यान जो है केवल इस बात पर लगेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी लौट करके मेरे पास आ जाए। अब मैं सोचूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पर्स निकालते हुए किसी और ने ना देख लिया हो। फिर जो भी खाकी ड्रेस पहना हुआ दिखाई देगा मुझे लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी हो और फिर पुलिस अब ढूंढ रही हो और पुलिस मेरी तरफ ही आ रही। हर पुलिस वाला ऐसा लगेगा जैसे वो मुझसे ही पूछताछ करने के लिए आ रहा है। मैं स्वाभाविक तौर पर असंतुलित हो जाऊंगा, मेरा सारा का सारा एंजॉयमेंट जो मैं मार्केटिंग को एंजॉय कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, चाहे हम अमर्यादित काम करें, जिसे आप अनैतिक काम भी कर सकते हैं, मर्यादाओं से परे जाकर के काम करें, चाहे हम गलत काम करें, ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुलित जीवन नहीं जी सकता। जो मैं मर्यादाओं की बात कर रहा हूं, हमारे परिवार की मर्यादाएं होती हैं, हमारे नौकरी की मर्यादाएं होती हैं, हमारे पेशे की मर्यादाएं होती हैं, हमारे संबंधों की मर्यादाएं होती हैं, इन सब की मर्यादाएं हैं, और हमारी ये मर्यादाएं हमारे बहुत से सांस्कृतिक तत्वों से जुड़ी हुई हैं। और उससे परे जाकर के अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम अपने मन में एक तरीके का अपराध बोध पाल लेते हैं, और जैसे ही हमारे मन में वो अपराध बोध डुबकी लगा करके बैठ जाता है, दुलत्ती मार कर पालथी मार करके बैठ जाता है, वैसे ही हमारे अंदर एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर हम उसे नहीं संभाल सकते। अगर हमने ऐसा कर लिया फिर तो संभालना मुश्किल ही हो जाता है। और आप मान करके चलिए कि हमने अपने कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस में एक काला धब्बा लगा लिया है, वो हमें परेशान करता ही रहेगा, ताउम्र परेशान करता रहेगा, संतुलन हमारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से मुझे एक और भी तत्व लगता है, वो है आर्टिफिशियलनेस। कि आपको नहीं लगता कि जब हम कृत्रिम जीवन जीना शुरू करते हैं तो अपने जीवन को असंतुलित करना शुरू कर देते हैं? आर्टिफिशियल लाइफ, मैं नहीं हूं लेकिन मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है लेकिन मैं दूसरों को ऐसे दिखाता हूं जैसे कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, कर्ज ले लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा हूं, कर्ज ले लेकर के बड़े बड़े होटलों में रह रहा हूं, कर्ज ले लेकर के बड़ी बड़ी मैं पार्टियां कर रहा हूं, जबकि मैं वैसा नहीं हूं। तो ये जो रियलिटी और आर्टिफिशियलनेस का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो खाई होती है, वो निश्चित रूप से व्यक्ति को असंतुलित करती ही करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मुझे समझा जा रहा है वो मैं हूं नहीं। मैं दूसरों के सामने तो झूठ बोल सकता हूं लेकिन खुद से मैं कैसे झूठ बोलूं? मुश्किल तो यह है ना, क्योंकि अवचेतन मन, अचेतन मन के सामने झूठ बोला ही नहीं जा सकता। मुझे तो मालूम है कि मैं क्या हूं, लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि दूसरे मुझे क्या समझते हैं, और दूसरे समझते वही नहीं है जो वो समझना चाह रहे हैं, दूसरे तो वो समझ रहे हैं जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूं। मतलब दूसरे मुझे जो समझ रहे हैं उसके लिए भी मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं उसके लिए सारे के सारी स्थितियां इस तरीके से रचता हूं कि वो मुझे ऐसा समझे। ऐसे में आप सोच करके देखिए कि अगर असंतुलन पैदा नहीं होगा तो क्या होगा। मित्रों, इसके सिवाय दो तीन और भी मनोवैज्ञानिक जो स्थितियां होती हैं, इसको आप तीसरा नाम दे सकते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थितियां। जैसे आप देखेंगे कि जब हम आशंकाओं से घिरे रहते हैं, अनावश्यक जब आशंकाओं से घिर जाते हैं तो मन उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, भूख मर जाएगी, नींद उड़ जाएगी, इस तरह की स्थितियां आती हैं। और ये सब उस बात के लक्षण हैं कि ये अंदर एक आंतरिक असंतुलन आ चुका है, ये इसके लक्षण ही इस तरीके से होते हैं। अदरवाइज तो सब चीजें ठीक ठाक चली रही थी, मन भी ठीक ठाक था, नींद भी आ रही थी, भूख भी लग रही थी और सब काम भी कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ अनमना हो गया है। क्यों? आशंका मन में आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। बस अनावश्यक आशंका, आशंकाएं आपको, हमको, सबको असंतुलित कर देती हैं। और ठीक इसी तरीके से किसी भी कारण अगर हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो तेज हो जाएं तो भी हम अंदर से असंतुलित हो जाते हैं। इमोशंस का तेज हो जाना, जैसे मान लीजिए कि जब आप बड़े प्रेम में भर जाते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है, कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे ला सकता हूं। यह बात अलग है कि अगर वो कहे कि बाजार से कद्दू खरीद करके ला दो तो वो भी लाना मुश्किल हो जाएगा, बाद में उसमें भी हम तकरार करेंगे कि तुम नहीं ला सकती, क्या करती क्या हो आखिर में। लेकिन वैसे जब हम प्रेम के आवेश में हैं तो चांद सितारे ला सकते हैं और समुद्र से मोती निकाल करके ला सकता हूं और पता नहीं क्या क्या कर सकता हूं। ये असंतुलन का एक आवेग है, लेकिन मैं इसे दूसरे रूप में भी लेता हूं, दूसरे रूप में लेता हूं कि वो समय और परिस्थितियों के अनुकूल है, इसीलिए कुछ गलत नहीं है। गलत तब होगा जब आप ऐसे समय पर किए गए वायदों को सिग्नेचर करके किया गया एफिडेविट समझ लें कि भैया तुम तो उस समय ऐसा कहते थे। वो ऐसा कहता था करने के लिए नहीं कहता था, वो कहने के लिए कहता था, क्योंकि उस समय ऐसा ही कहा जाता है, तो वो उस रूप में तो संतुलन है। लेकिन अगर आप उसे किया गया वायदा मान ले तो फिर वो बहुत बड़ा असंतुलन दिखाई देगा। दोस्तों, इसी तरह से क्रोध के समय में होता, वो भी एक उग्र भावना है। इसे आप प्रकृति से जोड़कर देख सकते हैं, प्रकृति एक संतुलन के तहत पूरा का पूरा काम करती रहती है। तूफान आ जाते हैं, तूफान क्यों आ जाते हैं? कहीं टेम्परेचर कम हुआ है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से तूफान, जहां टेम्परेचर बढ़ा है उधर कम टेम्परेचर वाले हिस्से से हवाएं आकर के तूफान पैदा कर देती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब के सब आंतरिक असंतुलन की स्थिति है। धरती में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लावा पिघल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, भाप बन गई है, अंदर घुट रही है धरती। अब घुट रही है तो क्या करे, कि जैसे आदमी को जब बहुत परेशानी होने लगती है, मितलाई आती, जैसे ही वोमिटिंग होती है उसका मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, तो धरती के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे ही वो ज्वालामुखी के रूप में वोमिट करती है या भूकंप के रूप में जैसे उसके अंदर की गर्मी निकलती है, वैसे ही वो अंदर से शांत हो जाती है, तो जो असंतुलन था वो संतुलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भावनाओं की उग्रता भी हमारे अंदर इस तरह के असंतुलन की चीज की स्थितियां लाती हैं, तो मित्रों, भावनाएं तो लगातार चलती रहने वाली चीजें हैं, इनसे हम पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक संतुलन का वह बिंदु होता है जहां, जिस बिंदु पर हमारा जीवन हर समय एक बहुत ही बेहतर रूप में काम करता रहता है, उस बिंदु पर तो हम हर समय रह सकते हैं, एक ही बिंदु पर हर समय नहीं रह सकते। एक मोटा स्पेक्ट्रम है, एक बड़ी चौड़ी बेल्ट है, कह लीजिए चौड़ाई है, उस चौड़ाई के बीच में जब हमारी मानसिक स्थिति अपने संतुलन के हिसाब से काम करती रहती है तो हमारा जीवन संतुलित जीवन ही होता है, बावजूद इसके कि उनकी आपस में थोड़ा बहुत असंतुलन चलता रहता है। हां, उस बेल्ट से, उस जोन से ऊपर या नीचे जाने के बाद उसमें कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है। जब हम उस बेल्ट के नीचे चले जाते हैं तो निराशा, डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति आती है, और जब उससे ऊपर हम चले जाते हैं तो वो फिर उग्रता की स्थिति आती है। अदरवाइज जो बीच का जोन है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस बीच के जोन में ट्रेवल करते रहें। जैसे कि आसमान में जब एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो एक बीच का उनका एक जोन होता है, उस जोन में वो लगातार उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सबसे आइडियल वेदर मिलता है, सबसे आदर्श मौसम मिलता है, तो उसमें वो अपनी उड़ान भरते रहते हैं। बस यहां तक ही हम अपने जीवन में कर सकते हैं। मित्रों, अब ये तो मैंने कुछ असंतुलन के कारण आपके सामने रखे हैं, लेकिन इतने ही कारण नहीं होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। मैंने केवल एक मोटे मोटे कारण आपको बताए हैं, और इनमें आप बहुत से अपनी तरफ से, अपने हिसाब से अपने कारण जोड़ करके इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आता हूं उपाय के रूप में। मित्रों, उपाय के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है और आप सोच भी रहे होंगे कि इतने कम वक्त में तो सर जल्दी से जल्दी उपाय बता करके और मामले को निपटा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उपाय क्या है, बहुत सरल उपाय है। ऊपर की स्थितियों से बच जाइए, यही उपाय है। अब आप कहेंगे कि ये तो मामला निपटा दिया। सच यही है, असंतुलन के कारणों से बच जाइए, संतुलन स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी संतुलित ही हैं। जीवन का जो अपना स्वरूप है मित्रों, वो संतुलित स्वरूप ही है। बच्चे को देखिए ना, वो कितने संतुलन की स्थिति में रहता है। ऐसा नहीं कि असंतुलन, भूख लगेगी तो बच्चा रोने लगेगा, अदरवाइज तो हर समय संतुलन की स्थिति में वो मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, मगन हो रहा है। तो हम वही तो हैं। प्रकृति हर समय, ज्यादातर समय संतुलन की स्थिति में होती है, हमने उसको असंतुलित कर दिया है। कहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा करके अल्निनो पैदा कर दिया है, तो कहीं कुछ कर दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अदरवाइज तो प्रकृति संतुलन में ही थी, और इस संतुलन के कारण ही तो उसने इतनी सारी चीजें रची हुई हैं। हम भी संतुलन की स्थिति में होते हैं। चलिए हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। सामान आप लेने गए हैं और तराजू पर ध्यान दीजिए। मैं उस तराजू की बात नहीं कर रहा हूं कि एक तरफ बाट रखे हुए और दूसरी तरफ सामान रखा हुआ है। मैं उस तराजू की बात कर रहा हूं कि जिसके ऊपर की नॉट आप पकड़े हुए हैं और उसके दोनों साइड में पलड़े हैं, और दोनों साइड के पलड़ों में आप बराबर बराबर सामान रखना चाह रहे हैं। कि मान लीजिए कि एक पलड़े में गेहूं है और दूसरे पलड़े में नमक है, और आपने ये फैसला किया है कि गेहूं की एक मात्रा के 10 गुना आप नमक देंगे। यानी कि आपने एक साइड में गेहूं चढ़ा लिया है, अब आपको 10 बार उतनी ही मात्रा का नमक उसे देना है। अब आप क्या करते हैं, बार बार इधर नमक चढ़ाते हैं, या तो नमक अधिक हो जाता है, पलड़ा झुक जाता है, इसका मतलब है कि नमक की मात्रा अधिक है, तराजू असंतुलित है, आप उसमें से थोड़ा सा नमक निकाल देते हैं, और जब वो संतुलित हो जाता है तो फिर आप उस नमक को उसे दे देते हैं, या जब आप नमक चढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पलड़ा है, नमक वाला जो पलड़ा है, वो गेहूं के पलड़े की अपेक्षा ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कि अभी असंतुलित है और इसमें और नमक डाला जाना है। फिर आप उसमें और नमक डालते हैं, और तब तक नमक डालते रहते हैं जब तक कि वो पलड़ा बिल्कुल गेहूं के संतुलन में नहीं आ जाता। और जैसे ही वो पलड़ा गेहूं के संतुलन में आता है, आप नमक डालना बंद कर देते हैं और फिर से नमक उसे दे देते हैं। मतलब संतुलन की दो प्रक्रिया हुई। नंबर एक कि या तो आप उसमें वजन डालते हैं, या उसमें से वजन हटाते हैं, निकालते हैं। बस दो ही तरीके हैं मित्रों। और ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी कारण बताए हैं, वो कारण सच पूछे तो इसी से जुड़े हुए हैं कि आपको अपने अंदर के बहुत से तत्वों को जो असंतुलन के कारण बन रहे हैं उन्हें निकालना है। जैसे कि मैंने उग्र भावनाएं कही, इच्छाएं कही, विचार कही, महत्वाकांक्षाएं कही, कार्य की अधिकता की बात कही, इन अगर ये सच में है तो इन्हें निकालिए, इन्हें समझिए, देखिए, इनमें काट छांट कीजिए, और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको अपने अंदर लेकर के आइए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास काम बिल्कुल भी नहीं है तब भी आप असंतुलित होंगे, तो काम लेकर के आइए। अगर आपके पास सिर्फ विचार है, इमोशंस नहीं है, इमोशंस के साथ थॉट का संतुलन होना चाहिए, तो आप इमोशंस लेकर के आइए। काम के साथ आप मनोरंजन को भी थोड़ा सा जोड़िए, ताकि उसमें आपका आपकी रुचि पैदा हो सके। तो इस तरीके से कुछ तत्व आपको शामिल करने होंगे, और कुछ तत्व जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं उनको खारिज करने होंगे, निकालकर बाहर करना होगा। और इस तरीके से धीरे 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 संतुलन की स्थिति बनती चली जाएगी। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो संतुलन की स्थिति होती है, ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं होती। हां, वो साधक पा लेते होंगे हिमालय की कंदराओं में जाकर के कि वो बिल्कुल संतुलन की स्थिति में बैठे हुए हैं, वो एक अलग बात है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके अगर वो एक ही काम कर रहे हैं तो संतुलन को पाना आसान हो जाता है। लेकिन आप हम जो गृहस्थ के लोग हैं, एक साथ पचासों काम करने होते हैं, समाज से घिरे हुए हैं, चारों तरफ चा चा चे चे में सब मची हुई है, इस बीच अपने संतुलन को बना करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उसमें हम यह मान करके न चलें कि हम ऐसी स्थिति को पा लेंगे जबकि हमेशा उसी सिचुएशंस में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अंत में मित्रों, एक बात और है कि आप कितना अपने आप पर नियंत्रण रख पाते हैं, ये संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है, स्व पर नियंत्रण, जिसे आप कह सकते हैं कि स्व में स्थित रहना, हम अपने आप में ही स्थित रहें। जैसे मैंने कृत्रिमता की बात कही, कृत्रिमता का मतलब यह कि मैं अपने में स्थित न होकर के किसी दूसरे में स्थित हो रहा हूं, वो जैसा कर रहा है मैं उसका अनुकरण कर रहा हूं, मैं भी वैसा बनना चाहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता, दूसरा जैसा है मैं वैसा बनना चाहता हूं, तो यह हो गया कृत्रिमता। स्व में स्थित रहिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या हूं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरी परिस्थितियां क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चाहता हूं, और बस उसमें लग जाइए, असंतुलन की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन मैं जब पर में स्थित होता हूं तब जाकर के असंतुलन की स्थिति आती है। और कितना प्यारा शब्द है दोस्तों, स्वस्थ। जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है, वह हेल्दी है, उसको ठीक ठाक है, यानी कि वो संतुलित है, मानसिक रूप से भी संतुलित है, शारीरिक रूप से भी संतुलित है, भावनात्मक रूप से भी संतुलित है, और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित है। वह जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है। तो मित्रों, मैंने जीवन में संतुलन विषय को लेकर जो आप में से ही कुछ दोस्तों ने सुझाए थे, ये चार इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत कुछ चर्चा की है। मैं ये तो नहीं दावे के साथ कह सकता कि मैं पूरी तरह से सही ही हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मेरा अवलोकन है, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरे अपने विचार हैं, उनको आधार बना करके मैंने अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों में आप अपनी भी बातें शामिल करके आप अपने लिए एक अलग से रास्ता तैयार करें, अलग से अपना खाका बनाएं, और फिर ये जो चार भागों में जो डिस्कशन हुआ है इसको सही मायने में जितना भी संभव हो सके अपने जीवन में उतार कर उसका उपयोग भी करें। सच पूछे तो तभी मेरी भी कोशिश सार्थक होगी, और आप इसको सुनने में जो समय दे रहे हैं, मुझ पर विश्वास करके जो इसे सुन रहे हैं, उसका भी लाभ मिल सकेगा, और उसी से मुझे आत्मसंतोष की भी प्राप्ति हो सकेगी। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं, और कोई विषय होगा उसे लेकर के फिर आपके सामने आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं, मेरा विनम्र अभिवादन फिर से स्वीकार करें। नमस्कार।